الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پیاری بہنوں ماشاء اللہ آپ میں سے اکثر لوگ حج کر کے آئے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کا حج قبول اور منظور فرمائے اور اس کو حج مبرور بنا دے. ہمیں ایک بات جو حج کے لیے بہت بڑی لالچ کی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حج کے ذریعے انسان کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے. گناہ ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے اس قدر خطرناک ہیں اور اس قدر اس کی ہلاکت کا سبب بننے والے ہیں کہ جو حج مبرور کا صلہ بتایا گیا وہ یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو یعنی کوئی بہت اچھی اپرچونیٹی جاب کی مل جائے گی, کوئی کاروبار بڑھ جائے گا, کسی کو یہ مل جائے گا. کیا اس کا صلہ بتایا گیا کہ انسان کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کی بخشش ہونا بہت بڑی کامیابی ہے کسی انسان کے لیے. آج کے دور میں ہمارے لیے جو سب سے بڑی چیز نقصان دینے والی ہے پوری امت, ایز امت بھی ایز انڈیویجول بھی, وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے خلاف فلاں سازش کر رہا ہے, فلاں ملک سازش کر رہا ہے, فلاں لوگ سازش کر رہے ہیں, فلاں میرے دشمن ہیں, فلاں ہیں. اصل ہمارے جو دشمن ہے وہ ہمارے اپنے گناہ ہیں, ہمارے اپنے اعمال ہیں, ہماری اپنی جو اللہ تعالیٰ کی ہم نافرمانی کرتے ہیں وہ ہے جو ہمارے نفس کو, ہمارے دین کو اور ہمارے حالات کو خراب کرنے والی ہے. آج میں اسی پہ آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں کہ گناہوں کی نحوست کیا چیز ہوتی ہے. ہم اکثر کسی انسان کو منحوس سمجھ لیتے ہیں یا بعض لوگ سمجھتے ہیں کسی نے ہم پہ جادو کر دیا, کسی نے ہمارے ساتھ ایسے برا کر دیا. کیوں ہے بے سکونی, کیوں ہے بے چینی, کیوں ہمارے حالات درست نہیں ہوتے؟ تو جہاں اور چیزوں کو تو ہم دیکھتے ہیں لیکن وہاں پر ایک چیز ضرور ہمیں دیکھنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے گناہوں کی نحوست ہے جو کہ مجھے مصیبت میں ڈالے دے. ہمیں کسی اور کے لیے کبھی نہیں ایسا سوچنا چاہیے, فلاں ضرور گناہ گار ہوگا نا اس لیے اس کو ایسا ہوا, کسی کے لیے نہیں ایسا سوچنا. لیکن اپنے لیے ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ کہیں ایسے تو نہیں مجھ سے کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی ہو جس کی وجہ سے میرے اوپر یہ وبال آ رہا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کوئی گناہ کر رہی ہوں. اور ہر انسان خطا کار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن, تمام بنی آدم خطا کار ہیں, لیکن ان میں بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لینے والا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم گناہ کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے بس معاف ہوتا رہے گا. ہم اتنا گناہوں کو لائٹ لیتے ہیں, اتنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بس سو واٹ, کیا اس سے کیا فرق پڑ گیا. حالانکہ یہی وہ چیز ہے جو انسان کی زندگی میں برکتی لے کر آتی ہے, یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے ہیں. اور ان عذابوں کی ڈفرینٹ فارم ہو سکتی ہیں, بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں, دکھ پریشانیاں بھی ہو سکتے ہیں, اسی طرح گھروں میں بے چینیاں بے سکونیاں بھی ہو سکتی ہیں. وقت میں سے برکت اٹھ جاتی ہے. وہی انسان آپ دیکھیں, ایک بندہ ہے وہ اسی 24 گھنٹوں کے اندر وہی کام کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا بندہ ہے وہ کہتا ہے مجھے سارا دن مجھ سے تو ہوتا ہی نہیں, کیا بات ہے, برکت ختم ہو گئی. برکت کیوں ختم ہوتی ہے؟ انسان کے گناہوں کی وجہ سے زندگی میں سے برکت اٹھ جاتی ہے, اسی طرح آپ کے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے. یعنی ایک بندہ 1000 میں ہی وہ گزارا کر رہا ہوگا لیکن وہی 1000 آپ کو ملتے ہیں تو کیا بات ہے کہ اس میں گزارا ہی نہیں ہو پا رہا. انسان کہتا ہے کیا بات ہے گزارا نہیں ہوتا, کیا مسئلہ ہے گزارا نہیں ہوتا, ہر وقت ایک پریشانی ہے. تو وہ کیا بات ہے, وہ بھی انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے. اسی طرح بے چینیاں بے سکونیاں ہر چیز ہے, ہر ایک سے ایک بڑھ کے لگژری ہے, ایک سے ایک بڑھ کے گھر کے اندر ریل پیل ہے, کھانے پینے کی, پیسے کی اور آسائشیں ہیں, لیکن پھر بھی کیا بات ہے سکون ہی نہیں آتا. رات کو پلس کھانی پڑتی ہیں سونے کے لیے, کیا مسئلہ ہے؟ तो वो इंसान के अपने गुनाह होते। अगर हमारे गुनाहों की बदबू आती होती ना, तो हमारे साथ कोई शायद बैठना भी ना पसंद करता। ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी रहमत है कि वो हमारे गुनाहों को ढांप देता है। लेकिन जब इंसान मरता है ना, तो फिर उसकी हकीकत खुल जाती है। आपने सुना होगा, कभी आप इस चीज़ को गौर करिएगा कि बाज़ लोगों के बारे में आता है कि वो फौत हुए, ऐसी प्यारी खुशबू आ रही थी, और उसके बाद भी किसी की कब्र खोली जाती है तो वो वैसे के वैसे होते हैं। और बाज हैं और उनको दो दिन भी नहीं रखा जाता, इतनी सड़ांध आना शुरू हो जाती है। इसकी मिसाल आपको मैं ऐसे देती हूँ कि आप घर में खाना बनाते हैं, आप उस खाने को आप बाहर रखे छोड़े, कवर करके आपने रखा हुआ है, दो दिन बाद आप कवर उठाएंगे, बदबू से आपकी दिल ख़राब होने लगेगा। और शहद है, उसको आप रख दें, साल भर के बाद भी कुछ भी नहीं, तो क्या फ़र्क है? उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसने उस खाने को ख़राब कर दिया, और शहद है वो खालिस है, वो ख़राब नहीं हुआ। इंसान के अंदर भी अपने अंदर कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जिनकी नापाकी होती है। ये नापाकी जो है ये तौबा से साफ़ होती है, ये ऐसे साफ़ नहीं होती। हम नहा लें, हम धो लें, हम अच्छे कपड़े पहन लें, उससे गुनाहों की पाकी नहीं होगी। और फिर जब इंसान की मौत आती है, तो या तो उसके आमाल हैं जो उसको खूबसूरत बना देते हैं और उसकी खूबसूरत खुशबू हर एक महसूस करता है, या उसकी बदबू होती है। गुनाह आज नज़र तो किसी को भी नहीं आते। हम मैं आपके सामने अच्छे कपड़े पहन के बैठ गई, मेकअप करके बैठ गए, तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हमारे गुनाह वो हमें पता है या अल्लाह ताला को मालूम है? और अल्लाह ताला भूलता नहीं है। मैं यामल मिसकाला ज़र्रतिन खैरन यरा व मैं यामल मिसकाला ज़र्रतिन शर्रन यरा। ज़र्रे के बराबर भी खैर भी इंसान को दिखा दी जाएगी और शर भी दिखा दिया जाएगा, और इंसान के गवाह होंगे वहाँ पे। ये नहीं है कि ये गुनाह करके, जो हमें तो अक्सर अल्लाह माफ़ करे भूल ही जाता है कि हमने क्या किया, कल मैंने क्या बातें बोली किसी मजलिस में याद नहीं है, परसों मैंने फ़ोन पे किससे क्या बातें की थी मुझे याद नहीं है, मैंने टेक्स्ट क्या किया था याद नहीं है, अभी कल परसों की बातें याद होती, सालों की बात कहाँ से याद होगी। हमें अपने बहुत सारे गुनाह हमें खुद ही नहीं पता होते, लेकिन अल्लाह ताला के हाँ गवाहियाँ होंगी। सबसे बड़ा गवाह खुद अल्लाह ताला है। चार गवाह हैं अल्लाह ताला के पास। सबसे पहले तो वो खुद गवाह है, क्योंकि वो समी भी है, बसीर भी है, अलीम भी है, खबीर भी है, वो देख रहा है। और इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उसका हदीस का मफहूम ये है कि अल्लाह ताला को इंसान का जो तन्हाई का गुनाह है ना, वो सबसे ज़्यादा उसके यहाँ नापसंदीदा है, उसको नहीं वो माफ़ करता है। क्यों? इसलिए कि तुमने हया की लोगों के सामने। लोगों के सामने तो आप हया कर रहे थे कि जी वो मुझे देख लेगा और उसको पता चल जाएगा, इवन हमारे पास हमारा कोई भी बैठा भी हो तो हमें थोड़ा सा होता है कि भाई ये भी देख लेगा ना, इसको भी पता चल जाएगा, तो उससे भी हम थोड़ी हया कर लेते हैं। लेकिन तन्हाई में, या मसलन हमारे अपने घर हैं, हमारी घरों की प्राइवेसी में हम क्या कर रहे हैं, हम शायद कभी लोगों के सामने वैसा बोलें भी ना, वैसा करें भी ना। कोई औरत अपने हस्बैंड के साथ कैसे बात करती है? वो अगर उसकी मूवी बन जाए उस वक्त, तो कभी भी किसी को दिखाना भी नहीं चाहेगी। वो अपने घरों में बच्चों के साथ या अपने और लोगों के साथ, इन लॉज के साथ या किसी के साथ भी क्या सलूक कर रही है ना, वो नहीं चाहेगी कि किसी को पता चले। लेकिन उस वक़्त इंसान ये नहीं हया करता कि मेरा रब तो देख रहा है ना, उसको लोगों की हया आती है। अल्लाह ताला को ये बात बुरी लगती है कि देखो इसको लोगों की शर्म आती है, लेकिन ये मेरे से नहीं शर्माता। तो सबसे बड़ा गवाह तो अल्लाह ताला खुद है। उसके बाद कौन गवाह है? ये जो हमारे किरामन कातिबीन है, ये जब से इंसान बालिग होता है उस वक़्त से इन्होंने लिखना शुरू कर देना, और जब तक इंसान की मौत नहीं आती ये एक लम्हा भी नहीं बैठते, ना उनकी कोई छुट्टी है, ना उनकी कोई ब्रेक है, ना वो उकताते हैं, ना वो थकते हैं, बस वो लिखते ही रहते हैं। और जब इंसान मर जाता है ना, तो उसकी ये बुक उसके साथ उसके गले में डाल दी जाती है और उसके साथ ही उसकी कब्र में जाती है। अब ये बुक अगर इसमें गुड डीड्स हैं, तो वो एक खुश शक्ल, खुश नुमा शख्स की सूरत में कब्र में आता है और वो कहता है, इंसान कि तू कौन है? कहता, मैं तेरा अच्छा अमल हूँ, मैं तेरा नेक अमल हूँ। और अगर इसके अंदर बुराइयाँ हैं, तो एक कभी शक्ल के अंदर उसकी श्वास कब्र में आता है तो वो पूछता है, तू कौन है? कहता है, मैं तेरा बुरा अमल हूँ, तेरे गुनाह हूँ। अब आज ठीक है, मेरे गुनाह किसी को भी नहीं पता और मैं सबके सामने बहुत पारसा बन के बैठी हूँ, लेकिन ये बताएं कि जब मेरी अपनी बुक मुझे साथ लेकर जानी होगी, तब कौन मुझे बचाने के लिए आएगा? और फिर जब हशर में उठेगा इंसान, तो वही गुनाह उसके ऊपर सवार हो जाएंगे, उसके ऊपर सवारी करेंगे और वो इनको लेकर चलेगा। ये बोझ है, हमें थोड़ा सा ग्रोसरी लेके भी कहीं चलना पड़े ना, जाना पड़े, कहते हैं कोई पकड़ ले मेरे से, बच्चा भी थोड़ी देर उठाए रखें तो कहते हैं थोड़ी देर तुम ही पकड़ लो। लेकिन इंसान को थ्रू आउट हशर में अपने गुनाहों का बोझ उठाना होगा जो उसके ऊपर सवार होगा। तो दूसरे कौन है? किरामन कातिबीन। तीसरे, उसके ये आज़ा, ये आज़ा हैं जो उसके गवाह हैं। इनसे आप किधर भाग सकते हो? इनसे तो नहीं ना कि इनको हम कहीं रखाएं फिर उसके बाद हम कोई गुनाह के काम करें, कोई नाफरमानी करें। ये तो हमारे साथ साथ ही हैं, सब चीज़ देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। अच्छा, अगर वीडियो कैमरे हमारे घर में लगा दिए जाएं, हम कहेंगे हमारी प्राइवेसी में मुदाखलत हो गई। हमारी तो प्राइवेसी है ही नहीं जब अल्लाह ताला ने इनको हमारे साथ लगा दिया। अगर क़यामत के दिन अल्लाह ताला ज़ुबान को हुक्म देगा, ये ज़ुबान बंद कर दी जाएगी, ज़ुबान नहीं बोल सकेगी, लेकिन इंसान के हाथ पैर उसके अज़ा बोलेंगे, उसकी स्किन भी बोलेगी और बताएगी उसके कारनामे। अगर नेकियां तो भी बताएंगे, अगर गुनाह है तो भी बताएंगे। तब इंसान कहेगा, हाय तुम मेरे खिलाफ बोल पड़े। जब उसको दोबारा ज़ुबान दी जाएगी, जब सारी गवाही ये मुकम्मल कर लेंगे, तो कहेगा तुम मेरे खिलाफ बोल पड़े, तुम्हें बचाने के लिए आग से तुम्हें ये झूठी बातें कर रहा था, तुमने मेरे खिलाफ गवाही देने शुरू कर दी और बोलना शुरू कर दिया। तो ये आज़ा कहेंगे, हमें उसने कुव्वत दी है जिसने हर चीज़ को कुव्वत दी है गोयाई की। अल्लाह ताला चाहे जिस चीज़ को बुलवा ले। अब आपके ये फ़ोन नहीं बोलना शुरू हो गए हैं क्या? ये मटीरियल ही है ना, तो अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल है कि हाथों को बुलवा ले, पैर बोलने शुरू कर दे, स्किन बोलनी शुरू कर दे। और चौथी चीज़ क्या होगी जो गवाह होगी, कोई बताएगा? थोड़ा सा आप लोग भी तो जहन पे जोर दें। हाँ, शाबाश, ज़मीन। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, में है ना, ये ज़मीन गवाही देगी। ज़मीन क्या बोलेगी कि ये अल्लाह इसने मेरे ऊपर यहाँ पर ये काम किया। हम सोचे स्पेस में हम चले जाते हैं, वहाँ पे कर लेते हैं कोई बुराई, स्पेस में भी ज़मीन पे ही हैं आप, ज़मीन के इससे बाहर नहीं निकल सकते, तब भी ये ज़मीन बताएगी। इसलिए जब मैं जहाज़ में नमाज़ पढ़ती हूँ, तो मैं कहती हूँ, या अल्लाह ताला इसको भी गवाह बना देना, कि ये भी गवाही दे कि यहाँ पे नमाज़ पढ़ी है। तो जब भी आप किसी जगह पर जाएं ना, तो वहाँ पे नमाज़ पढ़ लिया करें, ये सोच के कि अल्लाह कोई दिन होगा ना ये ज़मीन बोलेगी तो ये मेरी नमाज की गवाही दे। इसी तरह गुनाह है, गुनाह भी जहाँ पर भी करेंगे, ज़ाहिर है वो ज़मीन पर ही हैं आप, वो ज़मीन उस दिन बोल बोल के उसकी खबरें देगी। सूरह ज़िलज़ाल में यही है ना, उसकी खबरें बताएगी। तो फिर वो कहेगी कि ये बंदा मेरे ऊपर ये गुनाह करता था, ये ज़्यादतियाँ किसने की। तब इंसान सोचे बच के कहाँ जाएगा, उसके पास तो कोई जगह नहीं बचने की। ऐसे में इंसान के पास सिर्फ एक ही चाराकार है कि वो अल्लाह ताला के आगे तौबा इस्तिग़फ़ार कर दे। लेकिन हम तौबा को टालते रहते हैं और ये सोचते नहीं, अभी नहीं तब करेंगे, तभी नहीं कब करेंगे। आपको पता है ये भी गुनाहों की नहूसत होती है, कि इंसान को तौबा की तौफीक ही नहीं होती। कभी सोचा है आपने क्यों नहीं हमसे होती तौबा? गुनाहों के नुकसानात में से ये एक है, क्योंकि गुनाह ऐसे है कि जब स्टार्ट में ही अगर आपने तौबा कर ली ना, तो वो ऐसे जैसे कच्चे धागे की तरह, वो उस वक्त तो आप तौबा कर सकेंगे, लेकिन जू ही दिन गुजरते जाएंगे वो ऐसे है जैसे शिप अपना एंकर डाल देता है ना, इतना बड़ा शिप रुका हुआ है, उसने एंकर डाल दिया अपना पानी में ना, अब आप हिलाना चाहो नहीं हिलता। या जैसे पौधा है, अगर शुरू के अंदर उसकी इतनी जड़ें ही नहीं मजबूत हैं, तो आप उसको काटना चाहो तोड़ना चाहो तो टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब वो तनावर दरख्त बन जाएगा, आप उसको टाइम दे दोगे, तब उसको काटना कितना मुश्किल होता है। इस तरह से गुनाह है, जितना टाइम पास होता जाएगा उतना ही मुश्किल होता जाएगा, और हत्ता के वो भी दिन आ जाता है इंसान कहता है कि नहीं ये तो कोई इतना बड़ा गुनाह है ही नहीं, उसकी से तौबा की तौफीक ही छिन जाती है, उसको वो फिर गुनाह बड़ा लगता ही नहीं, क्योंकि वो इतना यूज्ड टू हो जाता है उसका, चाहे वो ज़ुबान के गुनाह हैं, चाहे वो किसी किस्म के भी गुनाह हैं। किसको नहीं पता ये अल्लाह की नाफरमानी? हम सबको पता होता है, अंदर हमारे ना कहीं ये बात होती जिसको ज़मीर को हम चुप करा के थपकी दे के सुला देते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, लेकिन हम जानते हैं हमारे बैक ऑफ आर माइंड होता है कि ये गुनाह का काम है, ये अल्लाह ताला की नाफरमानी है, और जब हम उसको सुलाते रहते हैं तो एक दिन ऐसा होता है कि वो आवाज़ आनी बंद हो जाती है कि ये गुनाह है, फिर क्या होता है, नहीं ये तो सारे ही करते हैं, तो फिर क्या हो गया, लोग तो इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं, तौफीक छीन गई तौबा की, अब वो मजबूत हो चुका है गुनाह, अब नहीं वो हिल रहा। कितने गुनाह किए थे आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत से निकाले जाने के लिए?
एक गुनाह,
बस एक ही किया था, सिर्फ एक, और जन्नत से निकाले गए। और हम सोचते हैं हम लाखों गुनाह करके भी हम तो पाक साफ ही हैं, हमने कौन सा ऐसा बुरा काम कर लिया, एक ही गुनाह था ना, सब कहते हो ना, और देख लो उस एक गुनाह से उनके लिए जन्नत से महरूमी हो गई, और हम सोचते हैं हम सारे गुनाह का पैकेज लेकर हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, गुनाह हमें कोई नुकसान नहीं देते, ऐसा नहीं है। गुनाह इंसान को इतना बड़ा नुकसान देते हैं कि तौबा की तौफीक ही छिन जाती है, और फिर एक गुनाह करने से ये नहीं होता कि वो एक रहेगा, एक से दूसरे का डोर ओपन होता है, दूसरे पे जाएंगे फिर तीसरे का डोर ओपन होता है, तीसरे पे जाएंगे फिर चौथे का डोर ओपन होता है, वो एक नहीं रहता कभी। किसी ने कहीं नाजायज़ दोस्ती की, अभी तक तो दोस्ती थी, अभी तक तो फ्रेंडशिप है, लेकिन वो वहीं तक रहेगी, वो आगे एक और दरवाज़ा खोलता है, फिर आगे एक और दरवाज़ा खोलता है। किसी ने अपने सर से ये हिजाब उतारा तो आपका मतलब है इतना ही रहेगा? नहीं, इतना नहीं रहेगा, फिर उसके बाद स्लीव्स भी छोटी होंगी, फिर गला भी डीप होगा, फिर ये आपके एंकल्स भी नज़र आने लगेंगे। एक गुना कभी एक नहीं रहता, वो मल्टीप्लाई होते हैं, फिर आगे से आगे और डोर्स ओपन होते हैं। नेकी का भी ऐसे ही है, लेकिन गुनाह के लिए भी इस तरह डोर्स ओपन होते हैं। इतना बुरा है गुनाह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इंसान एक गुनाह करता है तो उसके दिल के ऊपर एक स्याह नुक्ता पड़ जाता है, अगर वो तौबा कर लेगा तो वो मिट जाएगा, उसी वक्त तौबा कर ले, वरना फिर एक और किया, फिर एक और किया, करते 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 वो गुनाह से पूरा भर गया, इतना ब्लैक हो गया कि अब उसके अंदर कोई खैर की बात ही नहीं जाती। क्यों फिर नेकियों में दिल नहीं लगता? फिर हम कहते हैं आए अब देखो वो तो इतना अच्छे काम करे, पता नहीं मेरे से नहीं हो पाता, पर ये मेरे से नहीं होता, क्या क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं होता, वो मेरे गुनाह हैं जिन्होंने मुझे जकड़ लिया, दे आर शकल्स, इन्होंने मुझे जकड़ लिया है। जैसे वो ना किसी का की कहानी आती है, एक बात ऐसे ही वाक्या है कि एक बंदे ने किसी को हायर किया कि तुम मेरा सामान उठा के लेके जाना है तुम्हें, तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन देखो जब नमाज का टाइम आएगा ना तो फिर मैंने नमाज पढ़ने जाना है। उसने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, उसने सामान उठाया, थोड़ी दूर गया तो नमाज का टाइम हो गया, उसने कहा मेरा तो टाइम हो गया मैं जा रहा हूँ, छोड़ के सामान मस्जिद में चला गया। अब वो खड़ा है इंतज़ार कर रहा है, और फिर आवाज़ देता है बाहर से, आ भी जा, तुझे किसने रोका हुआ है? वो कहता, मुझे उसने रोका हुआ है जिसने तुझे अंदर आने से रोका, उसने मुझे बाहर जाने से रोका, कि तू बाहर खड़ा हुआ है, तू अंदर नहीं आ रहा, मुझे उसने रोका जिसने तुझे अंदर आने से रोक लिया। तो वाकई अल्लाह ताला फिर नेकी की तौफीक ही छीन लेता है, इंसान से नेकी हो ही नहीं पाती। तो क्या बात है, नमाज में नहीं दिल लग रहा, क्या बात है, लोग तो फजर भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं, तहज्जुदे भी पढ़ लेते, मेरे से क्यों नहीं हो रही? व्हाट्स द रीज़न? इस ये नहीं है रीज़न कि मुझसे उठा नहीं जाता, मेरा अलार्म बजता है, मेरा अलार्म सही नहीं है, मैं और क्लॉक ले लूँ, मुझे कोई जगाता नहीं, ये बात नहीं है। मेरे गुनाह हैं, इनको पहचाने, ये गुनाह नेकियों के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं, नेकी नहीं करने देते इंसान। अगर वो करना भी चाहेगा तो उसका दिल ही नहीं लगता, नेकी में दिल नहीं लगता। हाँ, आप सारी रात मूवीज़ देख लो, पूरी रात बैठे रहो शादियों के ऊपर, बड़े आराम से बैठे रहेंगे, लेकिन जूं ही इबादत का कोई वक्त आएगा हमसे तो हो ही नहीं रहा। हम एयरपोर्ट पे देखें, जब हमारी फ्लाइट्स होती हैं वो उसी के लिए तो हम निकलते हैं, रात के 2 बजे भी निकल के जा रहे होते, पूरे अलर्ट होते हैं, लेकिन एक रात को हमें इबादत करनी पड़ जाए, होती नहीं हमसे। क्या बात है, गुनाह हमारे, ये हमारे गुनाह हमें बर्बाद कर देने वाली चीज़ है। तो इन गुनाहों से इंसान को अपने आप को पाक करना है, इन गुनाहों से निकलना है, वरना ये गुनाह यही सबब हैं इंसान की बेसकूनी का, यही सबब है, घर है सकून नहीं है, औलादे हैं लेकिन ऐसे हैं जैसे बे औलाद बैठे हैं, रेस की फरमानी है लेकिन कोई खुशी नहीं, कोई सकून नहीं है, बीमारियां हैं रोज़ आए दिन, कोई उलझने हैं। उस वक्त तौबा इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है। देखो कुरान उठा के, कौमों की तबाही का सबब क्या बना, उनके गुनाह बने थे ना, कौम सबा के पास क्या नहीं था, अल्लाह ताला ने उनको ख़त्म करके रख दिया, ना शुक्रे थे, ना शुक्री बहुत बड़ा गुनाह है। और कौमों का देख लो, अल्लाह ताला ने उनके गुनाह गिनवाए हैं, इन्होंने ये गुनाह किए जिसकी वजह से, हम कहते हैं कोई नेचुरल डिज़ास्टर था, नेचुरल डिज़ास्टर की बात नहीं है, हमारे गुनाहों की बात है। आज कौन सा गुनाह है जो हम नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हम अपने आप को कहते हैं हम तो मुसलमान हैं, उम्मत मुस्लिमा है, हमें तो टॉप पे ही होना चाहिए। किस बात पे टॉप पे है? तुम देखो तो सही तुम्हारे हालात क्या हैं, कुरान के आईने में खुद को देखो कि कहाँ खड़े हुए, बहसीयत उम्मत भी, बहसीयत इंडिविजुअल्स भी, हमारी जिंदगियां, हमारे मामलात, हमारे ताल्लुकात, हमारे जुबाने, हमारे कारोबार, उन सब में कई गैर मुस्लिम हमसे आगे हैं, बेहतर हैं, और फिर भी स्टिल हम सोचते हैं कि वी आर द बेस्ट। आप बेस्ट तब हैं जब आप अल्लाह की नाफरमानियां छोड़ते हैं, उसका कलमा भी पढ़े, और फिर कहें कि नहीं हमारे ऊपर ये जो मुश्किलें आ रही हैं ये तो आनी नहीं चाहिए क्योंकि हम तो इतने अच्छे लोग हैं। तो क्या चीज़ है कि फिर इंसान अपने आप को इन गुनाहों से पाक करे? वो ये है कि इंसान तौबा इस्तिग़फ़ार करे, लेकिन तौबा इस्तिग़फ़ार के रास्ते में भी जो चीज़ हायल होती है ना, वो क्या है? शिर्क, सबसे पहली चीज़ शिर्क। आज शिर्क भी बहुत ज़्यादा है, अल्लाह ताला को एक पावर नहीं समझते, समझते हैं ये भी मेरा काम बनाएगा, वो भी, इसकी दरगाह पे चले जाओ, उससे मांग लो, उससे कह दो, ये हमारे काम करेंगे। कभी कहीं झुक रहे हैं, कभी कहीं झुक रहे हैं, और कह रहे हैं हम तो बड़े अच्छे मुसलमान। तो शिर्क है जिससे फिर तौबा भी नहीं कबूल होती, जो इंसान शिर्क करने वाला है उसकी तौबा नहीं कबूल होती। बिदात हैं, वो भी इंसान के रास्ते में हायल हो जाती हैं। बिदतों को छोड़ो, जो असल दीन है उसकी तरफ आओ। फिर तीसरी चीज़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबकी तौबा, सबकी माफ़ी हो जाती है सिवाय मुजाहिरून के। मुजाहिरून कौन है? सहाबा ने पूछा। जहर से, यानी जो एलानिया गुनाह करते हैं, यानी उनको शर्म नहीं रह गई अब। तो भाई एक इंसान, पहले ज़माने होते थे कि इन्हीं को लोगों को शर्म आ जाती थी कि नहीं देखो ये गुनाह है, इस तरह से नहीं करना, या किसी को किसी की शर्म हो जाती थी, कोई देख ना ले, कोई मोहल्ले वाला देख लेगा, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, या कोई। आज वो दौर है कि गुनाह इतने खुलम खुला होने शुरू हो गए, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بھی نہیں توبہ قبول ہوتی جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے. اس کو یہ شرم نہیں ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اس کو حیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے آتی کہ میں کیا کر رہا ہوں. آج آپ دیکھ لیں گھر گھر کے اندر, آپ دیکھ لیں, آپ پہچان ہی نہیں سکتے کون ہے مسلمان اور کون ہے ہندو یا کون ہے کرسچن یا کون ہے, آپ کو کوئی پتہ نہیں چلتا. ہم اتنے ہمارے رہن سہن, ہماری شادیاں, ہماری اور محفلیں, ہمارے جو ملنے جلنے ہیں, ہمارے طور طریقے ہیں, ہمارے لائف سٹائلز جو ہیں نا, وہ کہیں بھی اسلام والے تو ہے نہیں. تو اور کھلم کھلا ہے, اس کے اندر کوئی شرم نہیں رہ گئی. مسلمانوں کی شادیوں میں شرابیں بھی سرو ہو رہی ہیں, کھلم کھلا, کوئی شرم نہیں ہے. تو یہ تو آج کا ٹرینڈ ہے. جو بے حیائیاں ہو رہی ہیں سب کو پتا ہے, مجھے گنوانے کی تو ضرورت ہے نہیں. تو وہ کھلم کھلا نہیں ہو رہی کیا؟ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں معاف کرتا جو کھلم کھلا کرتا ہے. اور ایک وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا, جس کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کا پردہ رکھتا ہوں اور وہ اپنا پردہ خود چاک کر دیتا ہے. یعنی اس نے کوئی گناہ کیا, رات کو کیا, اور صبح وہ کہتا ہے میں تو رات کو اس محفل میں تھا, وہاں پہ میں نے یہ کیا یہ کیا, رات کو میں نے یہ کیا. اور آج کا آپ کو, اس زمانے میں تو کوئی بول کے بتاتا ہوگا نا, آج کا آپ کو بتاؤں کیا ٹرینڈ ہے, اس کو فوراً سوشل میڈیا پہ ڈال دیں. بٹ آپ کو نہیں بھی پتا نا کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے, تو یہ دیکھ لو کہ یہ جگہ پہ میں گئی تھی اور یہاں پہ یہ یہ میں نے کیا تھا, اور دیکھو. یعنی دے آر سو پراؤڈ آف اٹ, انسٹیڈ آف کہ انسان حیا ہی کر لے, شرم ہی کر لے. اور اس کو, اس کا مطلب اس کو برا لگتا ہی نہیں ہے, وہ اس کو برا ہی سمجھتا ہی نہیں ہے. اس کے لیے پراؤڈ مومنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا. وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت بڑی عزت کا باعث ہے. جانتے ہیں گناہ کی ایک اور نحوست کیا ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی نحوست یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جاتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے, جو اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جائے وہ کیا لوگوں کی نظروں میں عزت والا ہوگا؟ پھر وہی لوگ ہوتے ہیں, کہتے ہیں, ان کو کہتے سنا ہے دنیا بڑی مطلبی ہے جی, مطلب کی وجہ سے آتی, مطلب مطلب کی وجہ سے نہیں ہے وہ. ایکچولی کیا بات ہے کہ آپ کو وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی, اس کا مطلب ہے کہ اس کی نظر میں عزت نہیں رہی, لوگوں کی نظر میں بھی عزت نہیں رہتی. وہ تھوڑے سے فائدے کے لیے کسی کے ساتھ چپک جاتے ہیں, اس کے بعد کچھ نہیں. کیوں لوگ, دین والوں کے ساتھ تو ایسے نہیں ہوتا. لوگ تو کہتے ہیں اللہ ان کا ساتھ ہمیں جنتوں میں بھی دے. صحابہ کے لیے ہم نہیں سوچتے, بڑے بڑے جو محدثین تھے ان کے لیے نہیں سوچتے, وہ آج ہمارے سامنے تو نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اللہ ان کا ساتھ وہاں پہ بھی ملے. ان کو تو نہیں کوئی چھوڑنے والا کہ مطلب کے لیے جب تک وہ تھے ان کے ساتھ چپکے رہے, اور اب تو وہ ہیں بھی نہیں تو ہمیں کیا ان کا. آج بھی دعائیں ان کے لیے کی جاتی ہیں, ہاتھ ان کے لیے اٹھتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کوئی اور ہوتا ہے, کوئی ایسا جو اللہ کا نافرمان ہے, لوگ اس کے لیے بڑا اس کے ساتھ لگے رہیں اور اس کے بعد بھی اس کے لیے دعائیں؟ نہیں, لوگ اس کو بھلا دیتے ہیں, دنیا میں ہی اس کو چھوڑ جاتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے, لوگوں میں بھی اس کی کوئی عزت نہیں رہتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بلند کرے اور جس کو چاہے گرا دے, جس کو چاہے ذلیل کرے. عزت اور ذلت لوگوں کی نظروں میں نہ ڈھونڈو کہ میں ایسی بن جاؤں گی تو لوگ میری عزت کریں گے, میرے پاس پیسے ہوں گے تو لوگ میری عزت کریں گے, میں یہ برانڈ اور یہ پہنوں گی تو لوگ میری عزت کریں گے. نہیں, عزت کس نے دینی ہے؟ دیکھو یہیں پہ تو شرک آ جاتا ہے. عزت ان لوگوں نے نہیں دینی, عزت تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. وہ عزت دے گا تو آپ کو عزت مل جائے گی, وہ ذلیل کر دے گا تو. چاہے آپ کوئی برانڈ پہن لو, کتنا ہی پیسہ آپ کے اوپر ہو, سامنے آپ کے کوئی شاید تعریف کر دے لیکن ادھر پلٹے گا نا تو ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے دوسری طرف منہ کرتے ہیں اسی کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ شکایت کرتا ہے دیکھو جی میرا تو کوئی اپنا ہے ہی نہیں. کیسے ہوگا, تم اللہ کے نہ بنے تو تمہارا کوئی کیسے بنے گا؟ تم اللہ تعالیٰ کے بن جاؤ, اللہ لوگوں کو تمہارا گرویدہ بنا دے گا. لیکن اصل بات یہ ہے, ہم ہسبینڈ کی نظر میں اچھا بننے کے لیے کئی گناہ کرتے ہیں, بچوں کی نظر میں, لوگوں کی نظر میں, اس کی نظر میں, اس کی نظر میں, میں اچھی بن جاؤں اور تب میری عزتیں ہوں گی, سب مجھ سے لو کریں گے. ایسے نہیں کسی نے لو کرنا. وہ جو اگر آپ کو آئی لو یو کہہ بھی رہا ہوگا نا, وہ بھی اس میں بھی سچائی نہیں ہوگی, वही लोग मुड़ के फिर बुराइयां करते हैं। इसलिए अल्लाह ताला के बन जाओ और गुनाहों को छोड़ दो। गुनाह तभी इंसान का मिटता है जब फिर वो इस तरह अपने गुनाहों का ऐलान नहीं करता। और चौथी चीज़ जो गुनाह के रास्ते में रुकावट बनती, जो मैंने अभी आपको बताया, एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बंदा तहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएगा। बहुत बड़ा पहाड़ है वो, इतनी नेकियां होंगी, इतनी उसकी नेकियां होंगी, लेकिन उस दिन उसकी सारी नेकियां गुबार बना के उड़ा दी जाएंगी। तो सहाबा बहुत परेशान हुए, वो तो ऐसी चीज़ों को बहुत सीरियस लेते थे। तो उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह वो कौन सा बंदा होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपनी तन्हाइयों के अंदर अल्लाह से नहीं डरता था कि अब कौन सा मुझे कोई देख रहा है, अब मैं जो मर्ज़ी करूँ, अब इंटरनेट पर बैठे हुए हैं आप, अकेले हैं, कोई भी नहीं देख रहा, आप किस वेबसाइट पर जा रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। आए तो तन्हाइयाँ हमारी बिल्कुल ऐसे हो गई कि उसके अंदर गुनाह की बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पहले ज़माने में शायद इतनी ना होती होंगे कि लोग अकेले कितना को कुछ कर लेते होंगे। आज तो आपके सामने पूरी दुनिया खुली हुई है तन्हाई में भी। तब उस बंदे की इतनी सारी नेकियां भी उसको बचा नहीं सकेंगी। मैंने जैसे आपको बताया, क्योंकि उसने अल्लाह ताला से शर्म नहीं की, अल्लाह ताला की हया नहीं की। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक तो हम ना गुनाहों को मामूली ना समझें, ये ना समझें कि मैंने कौन सा ऐसा कर दिया, लोग तो इतना इतना कुछ करते हैं, आजकल तो ये भी हो रहा है, हम तो बड़े अच्छे हैं, आखिर मैं नमाज तो पढ़ती हूँ, आखिर मैं कुरान तो पढ़ती हूँ। तो दो चार अपनी नेकियों को लेकर और सोचते हैं कि पूरी ज़िंदगी के लिए हमने पता नहीं इतना कुछ कर लिया कि अब जन्नतों में जाने के लिए हम ही केपेबल और एलिजिबल हैं। नहीं, सहाबा कराम नेकी करके भी डरते रहते थे, हमेशा रोते रहते थे अपने गुनाहों के ऊपर। तो आपको पता है एक गुनाहों की नहूसत क्या है? इंसान की आंख जामे हो जाती है, इसे आंसू नहीं निकलता, क्योंकि दिल सख्त हो जाता है ना। जब दिल सख्त हो जाता है तो कभी उसको रोना आता ही नहीं अपने गुनाहों पर। कहता है पता नहीं क्या बात हो गई, मुझे अपने गुनाहों की फिक्र है ही नहीं, क्योंकि दिल सख्त हो गया। गुनाहों की नहूसत होती, दिल सख्त हो जाता है। तो क्या करना क्या है, अब उसके ऊपर आते हैं कि तौबा इस्तिग़फ़ार करें। और तौबा की जो शराइत है ना, वो भी तो समझ लेना। तौबा इस्तिग़फ़ार ये नहीं मैं तस्बीह पकड़ के तो 100 दफ़ा मैं इस्तग़फ़िरुल्लाह सर आज की मेरी तौबा हो गई। तौबा निदामत का नाम है, निदामत, पशेमानी, नहीं मैं आई एम रॉन्ग, ये चीज़ मेरी गलत है। अगर मैं मसलन है अपने हस्बैंड के साथ बदतमीज़ी करती हूँ तो ये मेरी चीज़ रॉन्ग है। अगर मैं ये बेहयाई का काम कर रही हूँ, ये मेरी चीज़ रॉन्ग है। सबसे पहले निदामत, अगर मैं बेपर्द घूमती हूँ मुझे इसके ऊपर निदामत हो। सबसे पहले शर्मिंदगी, नंबर टू उस गुनाह को फिर छोड़ दे इंसान। जाहिर है जिस पे शर्मिंदगी होगी उसको छोड़ेगा, ये थोड़ी करेगा फिर अब मैं लोगों में भी बैठ के बताऊंगी नहीं मैं ये गुनाह करती हूँ, फिर आप प्राउड नहीं होंगे। जाहिर है जब आपको शर्मिंदगी, जिस चीज़ पे इंसान शर्मिंदा होता है उसको छुपाता है कि हाँ किसी को पता ना चल जाए। तो शर्मिंदगी सबसे पहले, फिर उसको छोड़ना, और फिर तीसरी चीज़ आइंदा ना करने का अहद करना। ये है शराइत तौबा की। ऐसे नहीं है कि हम तौबा 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 तौबा, आज तो हमने तौबा कर ली और तौबा के किस्से सुन के बस हम बड़े खुश हो गए कि भाई हमारी भी तो तौबा हो ही गई। ना किसी चीज़ पे शर्मिंदगी है, ना कोई गुनाह छोड़ना है, ना कोई आइंदा अपनी ज़िंदगी में चेंज लाने का कोई अहद है, तो ये कौन सी तौबा है? हाँ ये अलग बात है कि इंसान कहे कि आज उसने अहद किया है, मसलन आज मैंने अहद किया मैंने अब कभी भी गीबत नहीं करनी, लेकिन फिर आप कहीं बैठे ओ हो ये क्या हो गया, फिर किसी की बात हो गई, सोचा था लेकिन बस हो गया उस वक्त, फिर भी कभी मायूस ना हो कि नहीं नहीं एक दफ़ा ही करूँगी अब तौबा मैं, अब ये तो रोज़ ही मेरे से हो जाता है। नहीं, फिर उसके बाद फिर तौबा कर लें और फिर मैंने अब कभी नहीं करना, बस अब मैंने सोच लिया मैंने कभी नहीं करना, और कॉन्शियस रहें फिर अपने आप की, कोशिश करें कि मैंने ये चीज़ छोड़नी है, फिर दोबारा अगर हो गई फिर तौबा कर लें, लेकिन अपनी तौबा को डिले ना करें। वरना ये ना हो कि मौत का दिन आ जाए और फिर तौबा का मौका ही ना मिले। यहाँ आपको एक वाक्य के साथ मैं आप बताना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला फिर जितने भी गुनाह हों उनको माफ़ कर सकता है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूसा अलैहि सलाम का किस्सा बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बारिश बहुत दिनों तक बंद हो गई थी, बारिश नहीं हो रही थी। तो जब बारिश नहीं हुई तो लोग बड़े परेशान हुए, जाहिर है बारिश नहीं थी तो यहत साली होने शुरू हो गई, लोग भूखे मरने शुरू हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को लेकर मैदान में निकले कि अल्लाह ताला से बारिश की दुआ करें, बारिश की दुआ किए जा रहे हैं बारिश ही नहीं हो रही। अब मूसा अलैहिस्सलाम, आपको पता है कलीमुल्लाह, उन्होंने अल्लाह ताला से सवाल किया, या अल्लाह हम बारिश की दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला बारिश नहीं हो रही। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बताया, है मूसा इनके अंदर एक बंदा ऐसा है जो मेरा इतना नाफरमान है, इतना उसने मुझे नाराज़ किया है, उस एक की वजह से बारिश मैंने बंद कर दी सब पे। अब पता है लोगों, ये होती है गुनाहों की नहूसत, कि गुनाहों की नहूसत की वजह से सब के ऊपर मुसीबत आती है। कहीं आप किसी नन्हे बच्चे को किसी मुश्किल के अंदर देखते हैं, आप सोचते हैं अल्लाह इसका क्या गुनाह है, उसका गुनाह नहीं होता। ये पब्लिकली जो अवाम के अंदर सारे गुनाह हैं उनकी, जैसे आप देखें वायरस जब फैलता है, अब वायरस वो छोटे बच्चे को भी लग रहा है, बड़े को भी लग रहा है, गुनाह इसी तरह है। वो वायरस है, वो वायरस ने सब चीज़ को ख़राब किया हुआ, उसमें वो भी लपेट में आ गया। अब वो एक बंदा उसके गुनाहों की नहूसत की वजह से सब की बारिश बंद हुई है। और आप सल्लम ने हदीस भी है ना, कई आमाल बताए, ये जब लोगों के अंदर होगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर लोगों के अंदर बेहयाई होगी तो ऐसी ऐसी बीमारियां उनके अंदर होंगी, पैदा हो जाएंगी, जो कभी किसी ने सुनी भी नहीं थी। को नाप तोल में कमी बेशी करेंगे तो महंगाई हो जाएगी, लोगों से चीज़ें उनकी रीच से दूर हो जाएंगी, यानी डिफरेंट गुनाहों के नताइज बताए। और हम जानते हैं मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बात से सच्ची बात किसी की नहीं हो सकती। अब कहते हैं इकॉनमी ख़राब हो गई, फलां हो गया, फलां हो गया, कोई ये देखता नहीं है कि ये देखो हदीस में तो ये बताया गया। तो वो बंदा जो था उसकी वजह से बारिश बंद हो गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया और लोगों से फरमाया कि लोगों एक बंदा तुम्हारे अंदर है जो इतना गुनाहगार है, उसने अल्लाह ताला को इतना नाराज़ किया, उसकी वजह से सारे सफ़र कर रहे हैं, तो वो बंदा मेहरबानी करके वो बाहर निकल जाए ताकि बाकियों को तो बारिश मिल जाए, वो अलग हो जाए। अब वो एक बंदा था जिसको पता था कि मैं वाकई ऐसा हूँ जिसने अल्लाह ताला को इतने सालों से नाराज़ किया हुआ और मैं कितना गुनाहगार हूँ। अब वो सोच में पड़ गया, अल्लाह अगर मैं निकलता हूँ सारों को पता चल जाने का, ये था वो, आज तक तो अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ था, ये था वो जिसकी वजह से देखो सारे कितनी लानत मलामत करेंगे, क्या इसकी इज्जत रह जाएगी। अगर नहीं निकलता तो सारों मेरी वजह से सफ़र करेंगे। उसने अपना सर झुकाया और उसने अपने हाथ उठा के अल्लाह ताला से फरियाद की, या अल्लाह ताला तू मेरा पर्दा रख दे, तूने आज तक मेरा पर्दा रखा, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ। और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। इतने में मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं कि बादल आया है और बारिश बरसने शुरू की। अब मूसा अलैहिस्सलाम हैरान है, निकला कोई भी नहीं और बारिश भी होने शुरू हो गई। तो अल्लाह ताला से पूछते हैं, या अल्लाह तुमने तो कहा था एक बंदा है जो बड़ा नाफरमान है तो उसकी वजह से बारिश रुकी हुई, अब तो बारिश हो गई। अल्लाह ताला ने फरमाया जिसकी वजह से मैंने बारिश रोकी थी उसकी वजह से आज मैंने बारिश कर दी, ये उस बंदे ने ऐसी तौबा की है और मेरी तरफ ऐसा पलटा, इतनी सच्ची उसकी तौबा थी कि उसकी वजह से मैंने बारिश की। मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं, या अल्लाह वो बंदा कौन है, क्या खुश नसीब है जिसकी तौबा ऐसी। अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा जब वो गुनाहगार था मैंने तो तब नहीं उसका पर्दाफाश किया, अब जब उसने मेरे से तौबा कर लिया तो मैं उसका पर्दा खोल दूं। ऐसे अल्लाह ताला की मेहरबानी होती। आज हम गुनाहों में लिपटे बैठे हैं लेकिन अल्लाह ताला ने हमारा कैसा पर्दा रखा। जैसे मैंने आपसे कहा, अगर आज हमारे गुनाहों की बदबू होती ना तो हम एक दूसरे से घिन खाते, करीब भी बैठना ना पसंद करते, भागते। लेकिन वो सत्तारुल अयूब है, वो सतर करता है हमारे ऐबों को, ढांप देता है, उसने ढांपे में है तो आज हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल हैं और हम एक इज्जत के बनाए हुए अपनी बैठे में। लेकिन इन गुनाहों को लेकर हम अल्लाह ताला की बारगाह में नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर सबके पर्दे खुल जाने हैं। پھر سب کے تماشے سامنے آ جائیں گے. اس لیے یہاں پہ ہم نے توبہ کرنی ہے اور سوچنا ہے. آج اگر ہم جا کے یہ سوچیں کون کون سے میرے گناہ ایسے ہیں, یہ اس مجلس سے ہم یہ لے کر جائیں, کون کون سے میرے وہ گناہ ہیں جن سے مجھے توبہ کرنی ہے اور میں آج تک نہیں توبہ کر سکی, میں اب کروں گی, میں نے اب کنٹینیو نہیں کرنا, مجھے پتہ ہے یہ غلط ہے اور میرے گناہوں کی نحوست ہے کہ میں نہیں توبہ کر پائی, اب میں نے چھوڑنا ہے. وہ چاہے زبان کے گناہ ہیں, وہ چاہے آنکھوں کے ہیں, چاہے ہاتھوں پیروں کے ہیں, چاہے کانوں کے ہیں, کوئی بھی گناہ ہے, ان کے اوپر آج میں نے توبہ کرنی ہے اور تنہائی میں کرنی ہے. یہ میرا اللہ جانتا ہو اور میں جانتی ہوں, اور پھر پشوری کوشش کرنی ہے اور کسی سے بھی نہیں ڈرنا. یہ کوئی کیا کہے گا, وہ کیا سوچیں گے, وہ کیا کہیں گے, کیونکہ گناہوں کی بھی مجلسیں ہوتی ہیں. جہاں پہ انسان وہ گناہ کرتا ہے نا, ان کی بھی کئی مجلسیں ہوتی ہیں, اس کے ساتھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ مل کے گناہ ہوتے ہیں, اور وہ ساتھی اس کو پھر کھینچتے ہیں گناہوں کی طرف, اس کو جانے نہیں دیتے. تو ہم نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی, کیونکہ عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو آج ہم نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی. اگر آج ہم یہ کریں گے تو اس مجلس کا کوئی فائدہ ہے, اگر ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے اور یہاں سے اٹھ کے بس ایسے ہی چلے جائیں گے تو بس میں نے بول دیا, آپ نے سن لیا, کچھ حاصل نہیں ہے, کچھ حاصل نہیں ہے. اٹ واز جسٹ اے ویسٹ آف ٹائم دین. لیکن یہاں سے کچھ لے کر جائیں اور ایک چیز کا بھی احساس اگر ہو جاتا ہے, ایک گناہ کا بھی احساس ہو جاتا ہے, تو شکر ادا کیجیے. اور جیسے جیسے آپ کی زندگی گناہوں سے نکلتی جائیے, آپ دیکھیں گے زندگی میں کتنا سکون بھرتا جائے گا, نیکی کا شوق آتا جائے گا, برکتیں لوٹنے لگیں گی, مشکلیں جو تھیں وہ دور ہونے لگیں گی. یہ اس کے ثمرات ہیں. جیسے ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے نا, آپ دیکھیں کہ آپ برف کو ہاتھ لگائیں گے اس کا ایک اثر ہے, آپ گرم دیچکی کو ہاتھ لگائیں گے اس کا ایک اثر ہے, اسی طرح گناہوں کا بھی اثر ہے نا. تو آپ دیکھیں گے ان کے اثرات ختم ہونے شروع ہو جائیں گے زندگی سے, اور زندگی میں خوشیاں آئیں گی پھر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو سچی توبہ کرنے کی, توبۃ النصوحہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما دیں, ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے بخش دیں. کیونکہ یا رب العالمین, ہم سزائیں سہنے کے قابل نہیں ہیں, یا اللہ تعالیٰ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں, اور یا اللہ ہم سے دنیا کی بھی مصیبتیں جھیلی نہیں جاتی. یا رب العالمین, تو ہماری ایسے ہی بخشش فرما دینا اپنی رحمت سے. ہم تیرے آگے توبہ کرتے ہیں کیونکہ تو بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے. یا رب العالمین, تو اپنی مہربانی سے, اپنی رحمت سے ہم سب کی بخشش فرما دیں, ہمارے گھر والوں کی بخشش فرما دیں, ہمارے بڑوں اور چھوٹوں کی بخشش فرما دیں, ہمارے زندوں اور مردوں کی بخشش فرما دیں. یا رب العالمین, ہماری کوتاہیوں کی طرف نہ دیکھنا, ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھنا, تو اپنی رحمت کی طرف دیکھنا. یا رب العالمین, اگر تو ہمارے گناہوں کی طرف دیکھے گا تو ہمارے گناہ تو بہت زیادہ ہیں, جو ہمیں یاد ہیں جو ہمیں یاد نہیں, جو بڑے بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں, تنہائی کے بھی ہیں اور اعلانیہ بھی ہیں. یا رب العالمین, ہم نے ہر طرح کے گناہ کر ڈالے, اپنی جانوں پہ ظلم کر لیے. یا رب العالمین, تو اپنی رحمت سے ہماری بخشش فرما دے. اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. یا رب العالمین, ہم رسوا ہو جائیں گے. یا اللہ, تو اپنی رحمت سے ہماری بخشش فرما. یا اللہ, آئندہ زندگی میں ہمیں گناہوں سے بچا کے رکھنا, کیونکہ ہم خود بچ نہیں سکتے. یا اللہ تعالیٰ, تیری توفیق کے بغیر کوئی بھی نہیں بچ سکتا. یا اللہ, تو بچا لینا ہمیں, تو بچا لینا ہمیں. اللہ, ہمیں ان مجلسوں سے دور کر دے جو ہمیں گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہیں, ان ساتھیوں سے دور کر دے جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جانے والے ہیں. یا اللہ, ہمیں وہ ماحول عطا فرما, پاکیزہ ماحول جس میں ہم نیکیوں میں آگے بھاگ سکیں. یا اللہ, ہمارے دلوں سے لوگوں کا ڈر نکال کے صرف اپنا ڈر ڈال دے, لوگوں کی محبت اور ان کو راضی کرنے کا شوق نکال کے اپنے آپ کو راضی کرنے کا شوق ہمیں دے دے, اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے. یا رب العالمین, تو بہت غفور الرحیم ہے, بہت مہربان ہے, اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے.
अगर तू अपने बंदों को पकड़ने लगे तो ज़मीन पर कोई चलने फिरने वाला भी बाकी ना रहे। या रब्बुल आलमीन, ये तेरी मेहरबानी है कि तुमने हमें आज तक मोहलत दी हुई है कि हम गुनाह करते भी हैं और फिर आराम से बैठे हैं। या अल्लाह, तेरी बड़ी मेहरबानी और तेरी बड़ी मोहलत है कि तूने हमें ढील दी हुई। या रब्बुल आलमीन, हमें मरने से पहले तौबतुन नसुहा की तौफीक अता फरमा, हमारी तौबा का कबूल फरमा लेना। अल्लाह, हमारी जुबान के गुनाहों को माफ़ कर, हमारी आंखों, हाथों, पैरों, कानों के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हमने जो जो भी नाफरमानियाँ की हैं या रब, तुझे याद है चाहे हमें भूल गई। या अल्लाह ताला, तू हमारे आमालनामे से उसको मिटा देना, ज़मीन को भुला देना, फरिश्तों को भुला देना। या रब्बुल आलमीन, जितने हाजरीन मजलिस है, या अल्लाह सबकी तौबा को कबूल फरमा दे। या रब्बुल आलमीन, जो लोग हज करके आए उनके हज को उनके अमाल नामे में हमेशा महफूज रखना, हज मबरूर की तौफीक अता फरमाना, बार बार अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाना, बार बार अपने घर पे बुला लेना। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल कर दे जिनसे तू राजी होता, हमें उन लोगों में शामिल कर दे जिनसे तू मोहब्बत करता। या अल्लाह, अपनी रजा वाले काम करवा लेना, इखलास अता फरमा, रियाकारी से बचा ले, तकब्बुर से बचा ले, हसद से बचा ले। या अल्लाह ताला, हमें दुनिया की मोहब्बत से बचा ले। या अल्लाह, शैतान के रास्ते की पैरवी करने से बचा ले। या रब्बुल आलमीन, हमें हर किस्म की आफतों से महफूज रखना, बीमारियों से महफूज रखना। आज के दौर के जितने फितने हैं उनसे हमें भी हमारी नस्लों को महफूज रखना। या अल्लाह, हमारी औलादों को नेक नामियाँ अता फरमा, उनको नेक बना दे, सिराते मुस्तकीम पे चला दे, उनके ईमानों की हिफाजत फरमा, हमारी नस्लों के ईमानों की हिफाजत फरमा, हमें हमारी औलादों के लिए बेहतरीन रोल मॉडल बना दे। या अल्लाह, हमें हमारी औलादों के लिए अच्छी मिसाल बनाना। या रब्बुल आलमीन, हमारी औलादों को दीन, दुनिया और आखरत की भलाइयाँ देना, नेमतें अता फरमाना, खुशियाँ देना। या अल्लाह ताला, उनसे अपनी दीन की खिदमतें ले लेना। या रब्बुल आलमीन, जो जो बीमार हैं तमाम को शिफाए कामला अजला अता फरमा दे। या रब्बुल आलमीन, हमारे घरों में जो कोई बीमार है तमाम को शिफाए कामला अजला अता फरमा। सेहत के ख़जाने सिर्फ तेरे पास है या अल्लाह, शिफा तेरे पास से मिलती है। या अल्लाह, तू शिफाए कामला अजला अता फरमा तमाम बीमारों को। या रब्बुल आलमीन, जिनके रोज़गार के मसाइल हैं, या अल्लाह ताला रिज़्क के हलाल के दरवाजे उनके लिए खोल दे, हमारे रिज़्क में भी बरकतें अता फरमाना। या रब्बुल आलमीन, कुरान को हमारे दिलों की जीनत बना दे, बहार बना दे, इसको सीखना, समझना, इसके ऊपर अमल करना हमारे लिए आसान फरमा दे। या रब्बुल आलमीन, अपने रास्ते पे चला दे और शैतान के रास्ते से हमें महफूज रखना। या अल्लाह, हमें मुनाफ़क़त से महफूज रखना, निफाक हमारे दिलों से निकाल दे, हमारे दिलों को पाक कर दे। या रब्बुल आलमीन, हमें बेहतरीन अखलाक अता फरमा, ऐसे अखलाक देना कि लोग दीन की तरफ खींचे चले आए हमारे अखलाक की वजह से, हमें बुरे रजील अखलाक से बचाना। या अल्लाह, हमें रजील बुढ़ापे से बचाना। या अल्लाह, मौत आए तो इस हाल में आए कि हमारी ज़ुबानों पर कलमा जारी हो, हमारा खात्मा बिल खैर फरमा देना, ईमान पे हमारा खात्मा हो, कब्र के अजाब से बचाना, जानकनी के अजाब से बचाना, हशर की सख्तियों से महफूज रखना। या रब्बुल आलमीन, हमारे दाहिने हाथ में उस दिन आमालनामा थमाना, अल्लाह मीज़ान में हमारी नेकियां भारी कर देना। या रब्बुल आलमीन, उस दिन हमारे गुनाहों की पर्दापोशी फरमाना। या अल्लाह, बगैर जहन्नुम दिखाए जन्नत में दाखिल फरमा देना, उन सिरात पे से बिजली किसी तेज़ी से गुजार देना। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमाना जो तेरा दीदार दिन और रात करने वाले। या अल्लाह, हमें सुरखरू करना उस दिन हमारे नबी के सामने कि वो हमारे ऊपर फ़ख्र कर सके। या अल्लाह ताला, उस दिन हम उनके सामने शर्मिंदा ना हो कि हमने उम्मती होने की हैसियत से कुछ नहीं किया। या अल्लाह, उनके उम्मती होने की हैसियत से हमसे वो काम ले लेना कि उस दिन वो हम पे फ़ख्र करें। उनकी हमसायगी नसीब फरमाना हमें जन्नतों को। या अल्लाह, हमें और हमारे जितने प्यारे हैं सबको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाना, जहन्नुम से बचा के जन्नत में जगह अता फरमाना, हमारे घरों में दीन को जिंदा फरमा दे, دین پہ چلنا آسان فرما دے. یا اللہ ہم صرف باتیں کرنے والے نہ ہوں. یا اللہ ہمارے قول و فعل کا تضاد ختم کر دے. جو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. ہمارے دل کو پاک کر دے, کینوں سے, حسد سے, بغض سے پاک کر دے. یا اللہ اپنی محبت اس میں بھر دے, اپنی محبت, اپنے دین کی محبت بھر دے. یا رب العالمین جنہوں نے ہماری مہمان نوازی کی ہے, آج اس مجلس میں مدعو کیا, یا رب العالمین اس کو ان کے حق میں حجت بنا دینا. یا اللہ اس مجلس کو ان کے لیے قبول فرما لینا, ان کو اجر عظیم عطا فرمانا, کہ گھر میں برکتیں نازل فرمانا, ان کو صحت تندرستی کے ساتھ, ان کو ان کی فیملی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ آباد رکھنا, ان کا یہ گھر ہمیشہ خوشیوں سے آباد رہے, ان کے رزق میں برکت عطا فرمانا, ان کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھنا. یا اللہ ہم سب کے بھی جو مسائل ہیں ان کو حل فرما دے, ہماری مشکلیں دور کر دے. مشکل کشا صرف تو ہے یا رب, ہم صرف تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں, کسی اور کے آگے نہیں. تو ہماری مشکلوں کو دور کر دے, ہمارے مسئلوں کو حل فرما دے. یا اللہ تعالیٰ جو چیزیں, جو گناہ رکاوٹ بن چکی ہیں ہماری دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں, ان گناہوں سے ہمیں دور کر دے. یا رب العالمین تو ہم سب سے راضی ہو جانا. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جانا. امت مسلمہ پہ اپنا رحم فرمانا. یا اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں جہاں جہاں جو لوگ ظلم سہ رہے ہیں, یا اللہ تعالیٰ ان کو آسانی عطا فرما. یا اللہ ان کی دعاؤں کو سن لے. یا رب العالمین ان کو اس کرب سے نکال لینا, اور ظالم کو تو ہی پکڑنا یا رب العالمین. یا اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک میں اپنی حفاظت میں رکھنا, ہمیں وہ حکمران دینا جو ہمارے ساتھ نرمی کرنے والے. یا اللہ ہماری ساری حاجتوں کو تو جاننے والا, ہماری ساری حاجتیں پوری فرما دینا.